आज है 22 दिसंबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं सुशीला सिंह। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में ट्रक हमले के बाद पुलिस को ट्यूनिशिया के युवक की तलाश। नोटबंदी के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी।
अरे मोदी जी आए, हजरिया पर सुबह बंद हो गया क्या, हम लोग कमाई भी नहीं हो रहा है, बच्चे भूखे भी मर रहे हैं। मोदी जी ये हजरिया बंद करी, दुकानदारी भी नहीं, एकदम खत चल रहा है।
क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी पिछले 6 घंटों में 5,500 परियोजनाओं को हरी झंडी।
मुख्यमंत्री जी को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता उनको वापस सैफई भेजने वाली है। अधूरी परियोजनाएं हैं, भारी भ्रष्टाचार है उसमें।
होगा दुनिया जहां और समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में लॉरी हमले के संदिग्ध की तलाश यूरोप के शेंगन देशों में जारी है। जर्मनी के अभियोजकों ने संदिग्ध हमलावर की पहचान उसके खिलाफ वारंट जारी कर की है और बर्लिन में क्रिसमस बाजार पर ट्रक दौड़ाने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये ट्यूनिशिया का एक शख्स है और जिसका नाम अनीस ए बताया जा रहा है। इसका जन्म 1992 में हुआ था। हमले के लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल किया गया था उसमें उसकी पहचान से जुड़े कुछ कागजात मिले थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महसाणा में एक रैली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का नाम कुछ उद्योगपतियों की डायरी में लिखा मिला था जिनसे उन्होंने पैसे भी लिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि आईटी विभाग के पास इससे संबंधित कागजात मौजूद हैं। इन्हीं में सहारा ग्रुप के लोगों की तरफ से नरेंद्र मोदी को 6 महीने में कुल 9 बार पैसे दिए जाने की बात कथित तौर पर लिखी पाई गई थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते हुए ये कहा,
हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खीज में लगा रहे हैं, ये सारे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जनता उनकी बात सुन नहीं रही है। एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में 10 साल से अपना राजनीतिक आचरण करने वाले राहुल गांधी से और कोई अपेक्षा हो नहीं सकती है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक सांसद के घर पर हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। तालिबान ने हेलमंद के सांसद मीर वली के घर पर हमले की योजना बनाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मीर वली वहां से बच निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 2014 में अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सेना की वापसी के बाद हेलमंद प्रांत में तालिबान ने बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की व्यापार नीति के कड़े आलोचक रहे पीटर नवारो को व्हाइट हाउस नेशनल ट्रेड काउंसिल का अध्यक्ष के तौर पर नामांकित किया है। पीटर नवारो चीन के कट्टर विरोधी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अरबपति निवेशक कार्ल इकान को नियामक सुधारों के मामले के सलाहकार के तौर पर नामांकित किया है। सीरिया के अलप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में अपने जीवन के बारे में अपने ट्वीट्स को लेकर काफी लोकप्रिय हुई 7 वर्षीय ब्लॉगर बाना अलाबेद तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच गई हैं। बाना को सोमवार को अलप्पो से निकाला गया था। तुर्की और रूस की मदद से अलप्पो से लोगों को छुड़ाने के लिए समझौता हो पाया था। बाना ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान से मुलाकात की है। ये थी बाना अलाबेद जो अलप्पो से बच्चों को बाहर निकालने में मदद के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का शुक्रिया अदा कर रही थी। अलप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से लोगों को निकालने का काम जारी है और आखिरी बचे लोगों को भी बस से रवाना कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस कमेटी ने सभी घायलों और मरीजों को अलप्पो से बाहर भेज दिया है। राहत एजेंसियों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी और बर्फ गिरने के कारण लोगों को शहर से निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो बीबीसी हिंदी .com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसे कि आपने मुख्य समाचारों में हरिता कांडपाल से सुना, बर्लिन में क्रिसमस बाजार पर ट्रक से हुए हमले के बाद पुलिस पूरे यूरोप में अब ट्यूनिशिया के 24 साल के युवक की तलाश कर रही है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी। जर्मन अधिकारियों का कहना था कि इस व्यक्ति का नाम अनीस अमरी है। मैंने इस बारे में बर्लिन में मौजूद बीबीसी संवाददाता जावेद सुमरो से बात की।
यहाँ पर बर्लिन में पुलिस और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो ये बता रहे हैं कि अनीस अमरी जो है वो तकरीबन 7-8 महीने पहले यहाँ आया था इस मुल्क में, असाइलम सीकर था, और उसने असाइलम की दरख्वास्त दी थी लेकिन उसका असाइलम मंजूर नहीं हुआ था और उसे एक आर्जी तौर पे टेम्प्रेरी रहने की इजाजत दे दी गई थी। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये शख्स तकरीबन 3 और सिटीजनशिप्स बताता रहा है लोगों को और 6 जाली या फेक नाम जो है अपने लिए इस्तेमाल करता रहा है। पुलिस का कहना है कि ये वाहिद वो है जो इस वक्त सस्पेक्ट है और पुलिस का ख्याल ये है कि हो सकता है कि ये जख्मी हो, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर के साथ इसकी लड़ाई में और उसको मारने के दौरान हो सकता है कि ये एक सस्पेक्ट है वो भी जख्मी हो गया हो। तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं पुलिस की तरफ से और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 1,00,000 यूरोस का इनाम रखा है इसकी गिरफ्तारी में जो मदद करेगा उसके लिए।
अनीस की गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी रखा गया है, ये बता पाएंगे कि कहां कहां तलाश जारी है अनीस के लिए?
देखिए, इसके लिए पूरे यूरोप में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इंटरपोल से भी मदद ली जा रही है, क्योंकि इस वक्त बर्लिन पुलिस को ये अंदाजा नहीं है कि वो मुल्क में है या मुल्क से बाहर चला गया है। इस शख्स के लिए लग्जमबर्ग में भी तलाश जारी है और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी कहा जा रहा है कि उसके लिए वारंट जारी किए गए हैं, क्योंकि पुलिस को खदशा ये है, अंदेशा ये है कि वो मुल्क से अब बाहर निकल चुका होगा। लेकिन पुलिस वाजे तौर पे कुछ अभी नहीं बता सकती। उनका ख्याल ये है कि अभी पूरे यूरोप में तलाश रहेगी और हो सकता है कि वो कहीं से पकड़ा जाए। दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये इसका जो ताल्लुक है अनीस का, वो ट्यूनिस के उस इलाके से है जो लीबिया के साथ सरहद पे या सीमा पर वाक़ है, तो हो सकता है कि वो ट्यूनिस या लीबिया चला गया हो।
जी, ये एक असाइलम सीक, तो अब शरणार्थियों को लेकर वहाँ के लोगों का क्या कहना है?
देखें, जब से चांसलर एंगेला मर्कल ने शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोले थे 1 साल पहले और तकरीबन 10,00,000 के करीब यहाँ पे असाइलम सीकर्स आए थे, उस वक्त से यहाँ पे एंगेला मर्कल के लिए एक जो उसके मुखालफत में रुझान है सियासी तौर पे वो बड़ा है। आज भी यहाँ बर्लिन में रेफ्यूजीज या असाइलम सीकर्स के खिलाफ एक मुजाहरा हुआ है। जो फार राइट की तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें, उन्होंने यहाँ पे मुजाहरा किया है कि शरणार्थियों को यहाँ पे आने से रोका जाए और जो आए हैं उनको वापस भेजा जाए। लेकिन साथ में ये भी आपको बताता चलूं कि आज ही दिन में एंटी फासिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फासिज्म के खिलाफ काम करती हैं, उन्होंने भी एक रैली निकाली थी और शरणार्थियों को वेलकम किया था। तो इस तरह से जो जर्मनी के लोग हैं वो डिवाइडेड हैं।
जर्मनी में ट्रक हमले के बाद ट्यूनिशिया के युवक की तलाश। ये थे बर्लिन से बीबीसी संवाददाता जावेद सुमरो। आठ नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद ठीक 45वें दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां वे केवल बूथ कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित करेंगे बल्कि वो कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में नोटबंदी के फैसले के बारे में लोग किस तरह का नजरिया रख रहे हैं, यही जानने की कोशिश की है इस रिपोर्ट में रोशन जायसवाल ने।
फिल्मी गीत को बांसुरी की मधुर आवाज देने वाले नवाब उन गरीब मेहनतकश लोगों में से एक हैं जिनकी एक दिन की कमाई न हो तो उनके घर का चूल्हा न जले। बनारस की सड़कों और गलियों में घूमकर खिलौने और बांसुरी बेचने वाले नवाब 500,000 की नोटबंदी के फैसले से काफी दुखी हैं।
अरे मोदी जी आ रहे हैं, हजरिया पर सुबह बंद हो गया, क्या कमाई भी नहीं हो रहा है, बच्चे भूखे भी मर रहे हैं। मोदी जी ये हजरिया बंद कर दुकानदारी भी नहीं, खत चल रहा है।
नोटबंदी के फैसले के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं खींचतान जारी है तो वो है बैंक में। नोटबंदी के फैसले के लगभग 6 हफ्तों बाद और पीएम मोदी के आगमन के पहले वाराणसी में भी बैंकों की कतारों में लगे लोग खुद को कोसते रहे। वाराणसी के गोलघर स्थित यूनियन बैंक की शाखा में कतार में लगे दीपक मालवी ने कुछ यूं अपनी बात रखी।
ये अत्यंत परेशानी भरा कदम है देश की जनता के लिए और हम इसकी तुलना वैसे कर सकते हैं जैसे एक कालांतर में एक मुस्लिम सरकार थी और मुसलमान शासक था। वो कभी पहले राजधानी दिल्ली, फिर उसके बाद दौलताबाद, फिर दिल्ली, और उस कार्यकाल में चमड़े के सिक्के भी चलाए गए। तो रोज ये आरबीआई की नई नई व्यवस्था आती है और लोग कहते हैं कि जो है आज ये कानून आ गया है, कल ये कानून आ गया। इससे वास्तव में जनता बहुत दुखी और बहुत हतोत्साहित है।
वही साड़ी व्यवसायी अतुल गुप्ता ने केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से अपील की कि वे आम जनता को हो रही दिक्कत से उबारे।
इनमें दिक्कतें उन लोगों को आ रही है जिनके पास गलत तरीके से पैसा आया या उन्होंने कमाया। अब एक आम आदमी के पास ना तो देखिए बहुत गलत तरीके का पैसा है और ना उनको इसकी चिंता है, तो उनके लिए अच्छा है। बस यही है कि जो उनको रोजमर्रा की दिक्कतें हैं या ये कह लीजिए जो उनकी आवश्यकता अनुसार जो पैसे चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। शासन को ये प्रदेश स्तर पे या केंद्र सरकार के स्तर पे इन सुविधाओं को जल्द से जल्द निकासी की जो व्यवस्था है उसको बेहतर ढंग से करना चाहिए था जो कि नहीं हो सका है।
500,000 की नोटबंदी के चलते गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को जिस तरह देश के अन्य शहर में दिक्कत का सामना करना पड़ा लगभग वैसे ही हालात पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी है। लेकिन नोटबंदी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का बनारस आगमन इन लोगों के लिए कितना मरहम का काम करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बीबीसी हिंदी के लिए वाराणसी से रोशन जैसा।
इधर भारत में अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने की मुहिम में अब सुलभ शौचालय भी शामिल होने जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल देश भर में अपने लगभग 9,000 शौचालयों और स्नानघरों में मोबाइल फोन से पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। सुलभ के संस्थापक डॉक्टर बिंदवेश्वर पाठक से बीबीसी के अपूर्व कृष्ण ने बात की।
इसमें क्या है कि जिसे सुविधा यह है कि हरदम पैसा लोग रहता नहीं है, एक्सचेंज नहीं रहता है, तो यदि मोबाइल से और पेमेंट हो जाता है तो सुविधा हम लोगों को क्या है कि पैसा जो है वो सीधे अकाउंट में चला आएगा और उसमें हमारे पैसे में गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। और कुछ फायदा ये होगा कि पैसा नहीं भी है किसी को है, मान लीजिए तो शौचालय का इस्तेमाल कर सकता है। हमारा तो ऐसे फ्री भी जाता है, आदमी नहीं है पैसा तो, लेकिन कोई चाहे कि भाई हम मोबाइल से पेमेंट करें तो कर सकता है वो। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि अच्छा वेलकम है ना कि जैसे स्टेप है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि सब जगह लगवा देंगे और जो लोग मोबाइल से पेमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
जी जनरली सर देखा यह गया है कि सुलभ शौचालय जिस जगहों पे होते हैं स्टेशन के पास या बाकी भी जगहों पर आमतौर पर जो साधारण भारतीय है वो उनका इस्तेमाल ज्यादा करता है। उतना हाईटेक शौचालय जिसकी एक कॉन्सेप्ट है वेस्ट वगैरह में उस तरह का नहीं होता है, साधारण लोग जाया करते हैं। वैसे लोगों को ध्यान में रखकर
आप सोचिए इंडिया जितना हाईटेक अब हो गया है साइंस में टेक्नोलॉजी में, अब देखिए ना अमेरिका भी मंगल ग्रह जितना हमने सस्ते भेज दिया भारत ने भेज दिया मंगल ग्रह पर, अमेरिका भी नहीं भेज पाया था।
भारत में तरक्की हो रही है, मोबाइल पे काफी कुछ काम हो रहा है, लेकिन साइंस अपनी जगह पर, मोबाइल फोन
नहीं, नहीं,
का इस्तेमाल अपनी जगह पे।
सुनिए मेरा कहना है कि सब लोग पेमेंट तो नहीं करेंगे ना मोबाइल फोन से, लेकिन जो करना चाहे वो तो कर सकते हैं ना। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि भाई जिसके पास जो पैसा देना चाहते हैं पैसा दे दे, वो तो रहेगा ही रहेगा, और बड़ी जो कोई है इसमें स्टेट बैंक का है उससे हम लोग कर रहे हैं। 5 वर्ष में देखिए कितना भी कुछ हो जाएगा तो कैश सिस्टम भारत बंद नहीं हो पाएगा। 1,30,00,000,000 यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ सभी पढ़े लिखे भी नहीं है और सब अर्बनाइज नहीं है, तो टोटल हम बंद कर दें कैश नहीं हो सकता है। लेकिन हम ऑप्शन रखेंगे कि जो लोग इससे करना चाहते धीरे धीरे देखिएगा कि मोबाइल एप्लीकेशन से कार्ड से पेमेंट ये सब बढ़ेगा अपने यहाँ।
सुलभ के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से बात कर रहे थे अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों तमाम ऐसी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने में लगे हैं जो अभी आधी अधूरी हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि पार्टी को सरकार में आने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा काम का श्रेय अभी ले लेना चाहती है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
पिछले 2 महीने समाजवादी पार्टी में भले ही आंतरिक घमासान में बीते हों, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस दौरान दर्जनों परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते रहे। कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मंगलवार को तो उन्होंने लोकार्पणों और शिलान्यासों की जैसे झड़ी ही लगा दी। लखनऊ में 13 अलग अलग जगहों पर 6 घंटे में करीब 5,500 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास कर डाला। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि उद्घाटित हो चुकी तमाम परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं और इन्हें अमल में आने में अभी महीनों लगेंगे। ऐसी परियोजनाओं में लखनऊ मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम खास तौर पर लिया जा रहा है। आखिर परियोजनाओं के उद्घाटन में सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
हमारा नारा ही विकास था और आज भी हम विकास की बात। कोई भी परियोजना जब बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं और वो जब शुरू होती हैं, जब उनका शिलान्यास होता है, उसमें वक्त लगता है, तो जब तैयार होती तभी तो उद्घाटन होगा। अब उद्घाटन का टाइम चाहे चुनाव से पहले हो, 10 दिन पहले हो, चाहे चुनाव से 2 साल पहले हो।
गत 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किया था, जिसका उद्घाटन अगले साल मार्च में होना था। मेट्रो में तो ट्रैक भी पूरी तरह से नहीं बन पाया था और उद्घाटन के लिए सिर्फ 8 किलोमीटर तक का ट्रैक बनाया गया, जबकि इसकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर है। यही नहीं, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया था और वो परियोजना भी अभी अधूरी ही पड़ी है। इस एक्सप्रेसवे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी नेता मायावती ने सवाल उठाए थे कि अधूरी परियोजना का उद्घाटन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं किया था, लेकिन अखिलेश यादव जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर ऐसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार को डर है कि वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए उसे उद्घाटनों की हड़बड़ी है। पार्टी प्रवक्ता हरिशन श्रीवास्तव कहते हैं,
उसका कुल एक ही कारण मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता उनको वापस सफाई भेजने वाली है। अधूरी परियोजनाएं हैं, भारी भ्रष्टाचार है उसमें, तो इसके दो कारण हैं। एक तो उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना, दूसरे सबसे बड़ा कारण कि अब ये सरकार जैसे हाँफ सी रही हो, दौड़ता हुआ बच्चा चल के हाँफने लगता है, वो हालत है।
अधूरी परियोजनाओं की लिस्ट में मुख्यमंत्री का नया सचिवालय भी है, जहां काम शुरू होने के बावजूद कई अहम हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि परियोजनाओं के उद्घाटन की जल्दी से साफ है कि सरकार की उपलब्धियों को चुनाव में भुनाना है, और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन बेहतर तभी होता जब काम पूरा करके इसका श्रेय लिया जाता। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ, और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। हरिता कांडपाल समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुकी हैं। हरिता
जी, आज सबसे पहले नजर पड़ी मेरी दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर। 90 साल की एक महिला है योहाना, वो रोज सुबह उठ के रनिंग और सीढ़ियों पर चढ़ती उतरती है और वो दुनिया की सबसे उम्रदराज जिमनास्ट है। इसमें जो तस्वीर छपी है उसमें वो बाकायदा, जैसे कि दीपा कर्मकार को हमने जिमनास्ट करते हुए देखा था, उसी तरह वो भी जो है जिमनास्ट कॉस्ट्यूम पहन के करती हुई नजर आ रही
है। रंग की पोशाक पहनी हुई है इन्होंने।
जी बिल्कुल, 86 साल की उम्र में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे उम्रदराज जिमनास्ट होने का। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की भी चर्चा सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर लिखता है कि नासिरा शर्मा सहित 24 को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसमें उन्हें हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए जेरी पिंटो और उर्दू के आलोचक निजाम सिद्दीकी चुने गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। इसके अलावा द हिंदू ने लिखी है खबर कि चेन्नई, बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के मुख्य सचिव पी रामा मोहना राव के घर और दफ्तरों पर छापे मारे गए और 30 लाख की नकदी जो कि नए नोटों में थी और 5 किलो सोना बरामद किया गया है। इसके अलावा द हिंदू की एक और खबर है जिसपे कहा गया कि पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर के मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत खराब है और 30% का अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है वो ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में जो सबसे कम वेतन पाने वाला जो वर्ग है उसमें 60% महिलाएं हैं। इसके अलावा जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर लिखी है कि नॉर्वे में एक दंपति है जिसने शिकायत की है कि उनका बच्चा जो है वहाँ के सरकारी अधिकारियों ने जो है उसे अपने कस्टडी में ले लिया है और ये आरोप लगाया गया माता पिता पर कि वो बच्चे को मारते थे। ये पिछले 5 साल में तीसरी शिकायत है भारतीयों की तरफ से कि उनका बच्चा जो है वो उनसे ले लिया गया है नॉर्वे की सरकार ने बच्चे के उत्पीड़न के मामले में। नोटबंदी पर जो है काफ़ी तंज कसे गए हैं। सोशल मीडिया का रिएक्शन जो है दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर हेडलाइन बनाया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया जो 5,000 से ज़्यादा रकम जमा करने को लेकर कल RBI ने अपना फैसला पलट दिया,
उसके बारे में।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिता कांडपाल। तो भारत में जहां नोटबंदी से लोग परेशान हैं, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी सरकार ने सबसे बड़े मूल्य के नोट 100 बोलीवार को अवैध घोषित कर दिया है। हालांकि लोगों के दबाव के बाद इस फैसले में देरी कर दी गई है, लेकिन अभी भी वहाँ ATM के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं और कई इलाकों में तो दंगे भी हुए हैं। वेनेजुएला में नोटबंदी के कारणों और उसके असर पर सुनिए इस हफ्ते का दुनिया जहां विनीत खरी से।
दुनिया जहां, ये आवाजें हैं वेनेजुएला के दूसरे बड़े शहर माराचाएबो से, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मदुरो की नोटबंदी की घोषणा के विरोध में दंगे भड़क उठे। सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतरना पड़ा। नौजवान हाथों में 100 बोलीवार के नोटों के बंडल लिए लहरा रहे थे और चिल्ला रहे थे, ये नोट बेकार हैं, लोगों के पास सामान ईंधन खरीदने के लिए नकद नहीं है। वेनेजुएला में ATM के बाहर लाइनें हैं, दुकानों पर हमले हुए और लूट हुई। पुलिस के साथ ऐसी झड़पें 6 शहरों में हुई और दर्जनों घायल हुए हैं। कारण यह है कि वेनेजुएला में सरकार ने 100 बोलीवार के नोट वापस लेने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति निकोला मदुरो, निकोला मदुरो कह रहे थे, मैंने वरिष्ठ जनरलों को आदेश दिए हैं और कहा है कि वो वेनेजुएला में घुसने के सभी रास्ते बंद कर दें ताकि ये नोट वापस ना आए। कोलंबिया में लोग इन नोटों को अपने पास रखें ताकि उनका भ्रष्टाचार उन्हीं तक सीमित रहे। ये थे राष्ट्रपति निकोला मदुरो। लेकिन जब सरकार को लगा कि रद्द हुए नोटों को बदलने के लिए नए बड़ी कीमत वाले नोट नहीं हैं, तो उसने 100 बोलीवार के नोटों की वैधता जनवरी तक बढ़ा दी है। तेल के दाम में कमी से जूझ रहे वेनेजुएला के 100 बोलीवार के नोट की कीमत 2 अमरीकी सेंट या 1.35 भारतीय रुपए है। वेनेजुएला में मुद्रास्फीति दुनिया में सबसे अधिक यानी 500% से भी ज्यादा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार वेनेजुएला में अगले साल मुद्रास्फीति आश्चर्यजनक तौर पर 1600% के पार जा सकती है। वर्ष 2003 से वेनेजुएला में मुद्रा पर कड़ा नियंत्रण है। अगर आपको वेनेजुएला में कोई सामान खरीदना हो तो आपको बैग भर भर कर नोट ले जाने होते हैं। कुछ ही दिन पहले सरकार ने आदेश दिया था कि लोग एक दिन में 100 बोलीवार यानी 5 अमरीकी डॉलर या मात्र 300 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। ताजा कदम पर सरकार का कहना है कि 100 बोलीवार के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार कम होगा। राष्ट्रपति निकोला मदुरो का आरोप है कि देश के पड़ोसी कोलंबिया में आपराधिक तत्व वेनेजुएला के नोट इकट्ठा करके सस्ता वेनेजुएला का सामान खरीदते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। साथ ही देश से लगे ब्राजील और कोलंबिया की सीमा को बंद कर दिया गया है। लोग परेशान हैं।
Anoche tuve que pagar 5000 bolívares en puro billete de 100 para poder comprarme una harina.
पिछली रात आटा खरीदने के लिए मैंने 100 बोलीवार के 50 नोट इकट्ठा करके दुकानदार को 5000 बोलीवार दिए। कोई भी 100 बोलीवार के नोट नहीं ले रहा है। अब आप इन्हें खा तो नहीं सकते।
कहीं कहीं तो ATM से भी 100 बोलीवार के नोट निकल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या उनके साथ मजाक किया जा रहा है? भारत और वेनेजुएला में उठाए गए नोटबंदी के कदमों और उन पर लोगों की प्रतिक्रिया के बीच क्या कोई फर्क है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर कैनेडियन US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर प्रीति सिंह,
भारत का जो ये डिसीजन है ये अभी अभी लिया गया है और इकोनॉमी भारत की अच्छी चल रही है, अभी बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं है। पर वेनेजुएला में जो ऑयल के प्राइस में जो घटाव आया है वर्ल्ड मार्केट में, इसके कारण वेनेजुएला की इकोनॉमी काफी वीक है इस समय। ह्यूगो चावेज का जो लेगेसी रहा है, जो कि अब मादुरो चला रहे हैं उसे, वो वेलफेयर इकोनॉमी पर बेस्ड है। तो वेलफेयर इकोनॉमी का मतलब है कि खर्च काफी ज्यादा है गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये हुआ है कि अब ऑयल का घटाव, प्राइस का घटाव और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इतना ज्यादा है कि इस कारण इकोनॉमी पेस कर नहीं पा रही है इसका सामना।
वेनेजुएला दो गुटों में बटा है, एक जो दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति उगो चावेज की सोशलिस्ट नीतियों के अनुयायी हैं, जिन्हें चाविस्टाज बुलाया जाता है, और दूसरा जो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के 17 साल के शासन का अंत चाहता है। वर्ष 2013 में उगो चावेज की मौत के बाद निकोला मदुरो को चावेज की नीतियों को जारी रखने के वायदे पर राष्ट्रपति चुना गया। चाविस्टाज का मानना है कि वेनेजुएला में तेल से अर्जित धन से गरीबी घटाने के लिए काफी काम हुआ है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 1999 में सत्ता में आने के बाद पार्टी ने अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। हाल के सालों में अमेरिका के साथ वेनेजुएला के रिश्ते खराब रहे हैं और चाविस्टाज का आरोप है कि विपक्ष अमेरिका की जेब में है। वेनेजुएला के निर्यात में तेल राजस्व का हिस्सा 95% है। तेल के दाम गिरने से इस धन पर निर्भर सरकारी सामाजिक कार्यक्रमों पर गहरा असर पड़ा है और पार्टी समर्थक नाराज हैं। और उसके ऊपर 100 बोलीवार के नोटों पर पाबंदी से यह नाराजगी और गहरी हुई है। वेनेजुएला में भारतीय राजदूत रहे निरंजन देसाई,
आप 100 बोलीवार के नोट निकाल लेंगे तो फिर ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे? ये तो मेरे ख्याल है ये जो मदुरो का लॉजिक है वो ठीक सही नहीं है, क्योंकि कोलंबिया में ड्रग बिजनेस ज्यादा तो कोलंबिया में है। उसके प्रॉब्लम यही है कि वेनेजुएला में स्केयरसिटी है, सब कंज्यूमर गुड्स की बहुत शॉर्टेज है, तो इसलिए वो होर्डर्स होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, दे होर्ड एंड दे सेल मनी, बट वाई वुड एनी माफिया वुड यू नो होर्ड बोलीवार नोट्स विच हैव नो वैल्यू, बिकॉज यू नो इवन दी एक्चुअल इन्फ्लेशन देयर इज नाउ अबाउट 700%। अगर डॉलर रखते हैं तो ठीक है, मगर ये बोलीवार के नोट गोदाम में रखकर क्या करेंगे?
इस कदम से आपको लगता है कि जो वेनेजुएला की इकोनॉमी आप बता रहे हैं 700% तक अगर वहाँ पर इन्फ्लेशन है तो उसको और नुकसान पहुँचेगा?
इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। उनका जो सोल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ाना है और सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। जितने भी ऑयल कंट्रीज है जिसने डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं वो सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप देखो सऊदी अरेबिया इतना रिच, वन ऑफ द वेरी रिच कंट्रीज ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम।
दुनिया के दूसरे देशों की तरह वेनेजुएला में भी काला धन ड्रग माफिया एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या मदुरो के कदम से काला धन कम होगा? प्रीति सिंह,
काला धन का की समस्या तो सब जगह है और लैटिन अमेरिका में खास करके। आपने सुना होगा कि ब्राजील का भी जो मेजर कंपनी है ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास, जिसके कारण की दिल्मा रूसेफ जो वहाँ की प्रेसिडेंट है उनको भी निकाला गया था। ये इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है जैसे मैं बता रही हूँ, इसमें काफी और कॉम्प्लिकेशंस हैं। करप्शन को लेके सभी देशों में समस्या, लैटिन अमेरिकन देशों में भी है, तो काला धन का इसका समाधान ढूंढ रही हैं गवर्नमेंट। और मादुरो का ये सोचना है कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी, मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है वेनेजुएला इकोनॉमी में, उसको ये डिसीशन लेने से शायद थोड़ा जो अटेंशन है पब्लिक की वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए।
उधर निरंजन देसाई मानते हैं कि वेनेजुएला की आर्थिक मुश्किलें अभी जाने वाली नहीं और चावेज के जाने के बाद अब वेनेजुएला शाइनी नहीं रहा।
ये बात सही है कि जो चावेज के बाद जो लेफ्टिस्ट फोर्सेस कामयाब हुए थे इलेक्शंस में कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्री में, अभी वो वेव डाउन हो गया है। जो वेनेजुएला का जो एग्जाम्पल था चावेज का वो अभी इतना शाइनिंग नहीं है। वेनेजुएला में जो हो रहा है उसका प्रॉब्लम दो ही है, एक तो लीडरशिप का प्रॉब्लम है और एक ऑयल प्राइसेस का प्रॉब्लम है, क्योंकि वेनेजुएला ऑयल पे ही डिपेंड करती है। उनके पास रिसोर्सेज है मगर सब निगलेक्ट हो गया है, क्योंकि ऑयल की इनकम बढ़ी थी अभी इनकम कट गई है और सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। वेनेजुएला में डेयरी इंडस्ट्री बहुत खूब हो सकती है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, मगर वो लोग बटर भी डेनमार्क से इंपोर्ट करते हैं। तो ये पूरा जो ऑयल बूम हुआ तो वो सब लोकल इंडस्ट्रीज डिड नॉट फेयर वेल बिकॉज इम्पोर्ट बहुत ज्यादा आ गई, तो यही प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज लोकल इंडस्ट्रीज नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है।
नोटबंदी के असर को लेकर भारत में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। क्या नोटबंदी से वेनेजुएला की आर्थिक और सामाजिक परेशानियां कम होंगी जैसा कि सरकार भरोसा दिला रही है? इस बारे में लोगों को बहुत ज्यादा आशा नहीं है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में लॉरी हमले के संदिग्ध की तलाश यूरोप के शेंगेन देशों में जारी है। इस संदिग्ध की पहचान ट्यूनिशिया के एक शख्स अनीस अमीर के तौर पर की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का नाम कुछ उद्योगपतियों की डायरी में लिखा मिला था जिनसे उन्होंने पैसे भी लिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की तरह साफ हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक सांसद के घर पर हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। तुर्की की सेना ने कहा है कि सीरिया के उत्तरी शहर अलबाब में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ाई में 14 सैनिकों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी अजीत सारथी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।